इतिहास करवट बदल रहा, युग ने दी अंगड़ाई,
जाग उठी भारत की नारियां, शिव से शक्ति पाई,
वंदे मातरम करे जगत,
श्रद्धा भाव समर्पण,
करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारित्व को देखें, एक वैचारिक क्रांति।
ओम शांति। मैं हूं इस प्रोग्राम का सूत्रधार अमन यतन वर्मा, और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रही हैं हमारे ब्रह्मा कुमारीज के गॉडलीवुड स्टूडियोज में एक बार फिर से पिछले 50 सालों से नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक ज्ञान में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाली वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्म कुमारी चक्रधारी दीदी जी, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए जी। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए अपनी बातें हमें बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने भी एक प्रयास किया है नारी के नैतिक और अनैतिक रूप को आपके सामने लाने का, चलिए आपको दिखा।
कामिनी और कल्याणी नारी के दो रूप है, परंतु दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक देह के पिंजरे में फंसी मैना है और दूसरी देह अभिमान से मुक्त उन्मुक्त आकाश में उड़ती पंछी है। एक ओर है कामिनी के रूप में नारी, जो अपने नैतिक संस्कार के अभाव के कारण ऐसे असभ्य लोगों के निमित्त है, जैसे रावण, कंस और दुर्योधन आदि। वहीं दूसरी ओर कल्याणी रूप में एक नारी, जो अपने नैतिक संस्कार से ऐसे व्यक्तियों के निमित्त है, जैसे स्वामी विवेकानंद, वीर शिवाजी, जो संपूर्ण समाज को एक नई दिशा देते हैं। ये नारी के संस्कार ही होते हैं जो किसी को या तो चरित्रवान बनाते हैं या फिर चरित्र विहीन। एक ओर नारी उसकी वेशभूषा में परिवर्तन आने से भार्य सुंदरता को अधिक महत्व देने के कारण मर्यादित चरित्र से निकलकर भोग्य बन जाती है और नर के द्वार खोलती है। इसके विपरीत जब वो कल्याणी के रूप में आत्मा के नारीत्व को दर्शाती है तो स्वर्ग के द्वार खोलती है। आज भी घर में नारी आहार, विहार और धन की स्वामिनी है। नारी एक ओर कामिनी के रूप में घर में धन का दुरुपयोग करती है और मांसाहार को महत्व देती है, वहीं दूसरी ओर वो कल्याणी के रूप में धन का सदुपयोग करती है, शाकाहारी भोजन बनाकर मनुष्य में अध्यात्म को कायम रखती है। एक ओर नारी न्यूक्लियर फैमिली को चाहने के कारण घर के बुजुर्ग को ओल्ड एज होम में भेजने में खुश है, तो वहीं दूसरी ओर कल्याणी के रूप में नारी संयुक्त परिवार में अपने बड़े बुजुर्ग की सम्मान से सेवा करने में खुश है। एक ओर नारी जहां अपने कैरियर के साथ अथवा स्वयं के लिए जीना चाहती है, बच्चों को बोझ समझती है, वहीं दूसरी ओर नारी परमार्थ के लिए जीती है और अपने बच्चों की नैतिक पालना को प्राथमिकता देती है। जब नारी अपने व्यवहार प्रकृति से विपरीत कार्य करती है तब देवी की उपमा को कलंकित करती है, वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिकता की झलक और फलक उसे जगत कल्याणी की उपमा देता है और उसे ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जब अपनी मर्यादा में नारी रहती है तो माँ सीता और लक्ष्मी का रूप कहलाती है। नारी का नैतिक और आध्यात्मिक चरित्र उसके व्यवहार पर ही निर्भर होता है, ये व्यवहार ही उसे महान और पूजनीय बनाता है।
दीदी, आज हम चर्चा करेंगे नारी के नैतिक और आध्यात्मिक सशक्तिकरण के बारे में। तो मेरे मन में जो पहला सवाल ये आता है कि जब भी नैतिक और आध्यात्मिक सशक्तिकरण की बात होती है तो हमें हमेशा पुरुषों का जो नाम है वो ही आगे क्यों आता है। कई धर्मगुरु जिन्होंने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं लेकिन उसका परिणाम कुछ समझ नहीं आया, तो क्या कारण है इस बारे में?
हमारी संस्कृति में पुरुषों की प्रधानता होने के कारण लेक्चर्स बहुत हुए, शिक्षाएं देने का कार्य बहुत हुआ और शिक्षाएं सुनने वाले भी सभाओं में बहुत आशारक शिक्षाओं को सुनते भी चले आए। लेकिन ये प्रभाव ना होने का मैं ये समझती हूँ एक मूल कारण, और इसके लिए माता ही उपयुक्त एक साधन, क्योंकि जैसे किसी पौधे को लगा देना ये काफी नहीं होता है, पौधा लगा देने के पश्चात उस पौधे की सुरक्षा भी आवश्यक है और उसके आसपास आया हुआ वो घास या वो व्यर्थ चीजें उसको उखेड़ कर अलग करना भी जरूरी है। तो कोई भी अध्यात्म के पथ पर चलाने के लिए बहुत आवश्यक है कि उनके रास्ते में आने वाली छोटी मोटी बाधाएं उनको दूर करने का उनको सहयोग ही नहीं सहानुभूति स्नेह और वो प्यार मिले। तो मैं समझती हूँ माँ का गुण एक ऐसा गुण है जो आध्यात्मिकता का केवल ज्ञान नहीं देगी लेकिन प्राणी को आध्यात्मिक बना देगी, और आज तक ये जो कमी रही मुझे ऐसा लगता है उसका एकमात्र कारण ये हुआ कि विद्वान बहुत मिले लेकिन उस विद्वता को जीवन में पालन कराने के लिए जो पालना चाहिए वो चीज ना मिलने के कारण आज हम परिणाम सब देख रहे हैं जो हम सबके सामने।
नारी के आध्यात्मिक और नैतिक सशक्तिकरण की इस चर्चा में आगे हमारे साथ जुड़ेंगी हमारी खास मेहमान। कौन है वो खास मेहमान जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप प्लीज कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।
अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, तेरी चमड़ी का सौदा होता है, तुम वस्तु बन गई हो।
मुझे शक्ति दो,
कमजोर बताना बंद करो, ये फूल नहीं चिंगारी है, इसे सताना बंद करो, सबला भारत की नारी है। धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया, हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना देख उसमें आत्मदर्शन नारीत्व दर्शन करें। देखना ना भूलिएगा, विनर ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट नेशनल अवार्ड नारीत्व दर्शन। आओ करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारित्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति।
ओम शांति। ब्रेक के बाद आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं नारी के नैतिक और आध्यात्मिक सशक्तिकरण के बारे में, और हमारे साथ जुड़ रही हैं फिर से एक ऐसी हस्ती जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से न्यूमरोलॉजी के क्षेत्र में अपना परचम फहराया, जिन्होंने ओबामा के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी पहले से ही कर दी थी और जिनका आध्यात्मिकता के प्रति बचपन से ही रुझान रहा। ऐसी विशिष्ट हस्ती रिंपल ग्रोवर जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। रिंपल जी हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने भी अपनी बहनों से जाना कि उनके अनुसार वो क्या बातें हैं जो नारी अपने जीवन में हर दिन महसूस करती है और क्यों उसे कमजोर कहा जाता है। चलिए सुनते हैं क्या कहती हैं हमारी बहनें।
मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ तो खुद को असुरक्षित महसूस करती हूँ। लड़कियों पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आध्यात्मिक शिक्षा की आज भी बहुत जरूरत है।
मेरा घर एक मंदिर जैसा है, हम लोग शाकाहारी है, मैं भगवान को भी शाकाहारी भोग लगाती हूँ, और मेरी बहू है वो वेस्टर्न संस्कृति की है, वो मांसाहारी पसंद करती है, तो मेरा घर को क्या मैं कतल खाना बनाऊं क्या?
मैं भारतीय नारी हूँ, भारतीय परिधान को सम्मान करती हूँ, लेकिन आजकल की लड़की लोग वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े पहनते हैं, आध्यात्मिक विचार को पुरानी बात समझती है।
रिंपल जी, ये सवाल आपसे, ऐसे कौन से इश्यूज हैं जो समाज की नींव को आज हिला रहे हैं, बताइए मुझे।
मैं दिल्ली से हूँ, तभी आपको पता होगा दिसंबर में जो हुआ दिल्ली में,
बहुत बड़ा कांड,
बहुत बड़ा कांड। आई थिंक पूरा भारत क्या बाहर तक हिल गया। देखिए तो वो देखकर ठीक है, हमारी कन्याएं जागृत हुई, लड़ी, इंडिया गेट पे जाके बैठी, फाइट किया आपने उसके इंडिपेंडेंस के लिए कि ये कब तक होगा कि हम डरकर अपनी चार दीवारी में बैठे रहेंगे, सबका ठीक नहीं होगा तब तक आई थिंक औरत आगे बढ़ नहीं पाएगी।
दीदी ये सवाल आपसे कि नारी की दशा में कोई सुधार क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है? इतने साल हो गए, इतनी बातें हम करते हैं, तो ऐसा क्यों है कि क्यों सुधार नहीं आ रहा है?
मैं ऐसा समझती हूँ कि कई बार वो अधिकार प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि ये चीजें मनुष्य के दृष्टिकोण के परिवर्तन पर निर्भर करती है। जब तक पुरुष का स्त्री के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित नहीं हुआ, तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता है। लेकिन माँ जिसने जन्म दिया है, ऐसी माता के प्रति वो दृष्टिकोण जो होना चाहिए आज वो दृष्टिकोण, जो बहन के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए आज वो दृष्टिकोण
नहीं।
और स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के दृष्टिकोण को चेंज कर, जिसको आज लोग समझते आध्यात्मिकता तो शायद बुढ़ापे की चीज है, बुढ़ापे की चीज नहीं है। अगर देश को उन्नत होना है, समाज को सभ्य समाज बनाना है, उसके लिए आध्यात्मिकता के बिना और कोई रास्ता नहीं जो मानव को मानवीय जीवन जीने की एक राह दे।
बहुत तो देश को उन्नत बनाना है, आगे बढ़ाना है, तो आध्यात्मिकता को मानना बहुत जरूरी है। ऐसी भी कुछ बहनें हैं जिन्होंने समाज के हर बंधन को तोड़ा और अपना जीवन सफल बनाया। चलिए मिलते हैं उन बहनों से।
मेरा घर एकदम छोटा सा है और एक छोटी सी गाड़ी है। मेरा पति बैंक में ऊंची पोस्ट पर सर्विस करते हैं। उसकी एक साइन से करोड़ों की लोन पास हो जाती है, लेकिन वह रिश्वत से बहुत खिलाफ है। वह संतोषी आत्मा है, मैं भी संतोषी आत्मा हूँ, और उनका श्रेय वो मुझे देते हैं और उनके मेरे नैतिक संस्कारों को देते हैं।
मैं क्रोध की शिकार थी, कोई मुझे प्यार नहीं करता था, बच्चे भी मेरा मान नहीं रखते थे। जब से मुझे ईश्वरीय ज्ञान मिला, जीवन में शांति की बहार आ गई, मेरा घर शांति कुंज बन गया।
बहनों के इस हौसले और जज्बे को हमारा दिल से सलाम। ये नारियां अन्य नारियों के लिए प्रेरणा सूत्र है। रिंपल जी, ऐसा कौन सा वो प्रैक्टिकल उदाहरण है जिसके नैतिक और आध्यात्मिक सशक्तिकरण सफल हो रहे हैं और बेहतर समाज की ओर ले जा रहे हैं, ये बताइए।
पहले तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो आजकल स्कूलों में हो रही है। दिल्ली में स्टार्ट हो गई है,
दिल्ली में शुरू हुआ,
दिल्ली में काम,
बल्कि मैं कहूंगा दिल्ली में तो आई थिंक एक तरह से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरा ये मानना है कि माओं की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि अपने बच्चों को, अपने लड़कों को क्या सिखाएं, पढ़ाई के अलावा क्या बताएं कि औरतों की तरफ किस तरह से पेश आना, आई थिंक वो बहुत ज्यादा जरूरत है। दीदी जैसे कि हमने हमारे ग्रंथों में एक बात कही और सुनी कि यदि नारी तर जाए तो वो अपने साथ साथ कुलों को भी तार देती है, इसका क्या अभिप्राय है? पहले ये बताइए, फिर मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा।
क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि बच्चे का प्रथम गुरु नारी, वो बच्चा जो माँ की पालना में पलता है वो माँ से बहुत कुछ सीखता है, और कुछ ऐसी बातें जो बड़े होने तक अंश रूप में भी उन बच्चों में रह जाती, और वही बच्चा कल को कुल बढ़ाने के काम आता है। और जब वो अपने कुल को बढ़ाने जाता है तो उसमें उसकी जो जीवन की श्रेष्ठताएं जो माँ से उसने ली होती हैं, वो अपने परिवार में वो श्रेष्ठताओं को पसंद करता है। और ये भारतीय संस्कृति है कि पति की पसंदगी में पत्नी चलना चाहती है। यहाँ तक भारतीय संस्कृति ने कह दिया, पति तो तेरे लिए परमेश्वर करो। इसका मतलब यही है कि अगर वो कुछ अच्छी बात आपको कहते हैं उसे आपको स्वीकार करना चाहिए। अगर बच्चा होने के नाते भी माँ की श्रेष्ठ पालना में पलने पर उसमें श्रेष्ठ बीज है, और वो श्रेष्ठ बीज पत्नी में नहीं है, लेकिन वो अपने श्रेष्ठ बीज इस परिवार में, जिस परिवार को वो बढ़ाने जा रहा है, वो उसमें भी लाना चाहता है, तो सर्वप्रथम पत्नी उन संस्कारों में पलती है, और फिर जिन बच्चों को जन्म देती है उन बच्चों में वो संस्कार डालती है, और पिता भी उन संस्कारों में पला होने के कारण माँ के समान उन संस्कारों को पालने में बहुत सहायक सिद्ध हो, जिससे जो पालना उसने ली थी वो पालना उसके कुल के तारने में वो चलती चली जाए, इससे कुल तरता है। तो ये समझे ठीक है जमाना अभी बदल गया है, बदला जमाना है, लेकिन जो श्रेष्ठ संस्कृति है वो कहीं नहीं जाएगी, सत्यता का भी नाश नहीं होता है। परिवर्तन दुनिया में कई प्रकार के आएंगे, सत्यता चलती चली जाएगी, और जिसने इस बात को समझा और सत्यता को कायम रखा वो कुल कायम रहेगा और कुल तरता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा।
याद रखिएगा कि सत्यता कभी नाश नहीं होता है। खैर, अगला सवाल हमारा ये है कि आपकी राय में अध्यात्म कितना उपयोगी है नारी सशक्तिकरण में, अध्यात्म की क्या भूमिका है नारी के सशक्तिकरण में, ये बताइए मुझे।
आज कई बार माँ कुछ काम करती है और बच्चे को लगा देती है, कोई ना कोई टेलीविजन चल रहा है, बच्चा भी देख के नाचता है, ये नहीं समझती है कि इस बच्चे के संस्कारों में सब चीजें आ रही हैं। क्यों नहीं उस समय कुछ ऐसी अच्छी से अच्छी ऐसी चीज उस बच्चे को दिखाए जो उस बच्चे को ना जानते हुए भी ना चाहते हुए भी उसके संस्कार में श्रेष्ठता उतरती जाए। हमको याद है हम अपने छोटे जीवन में ही अध्यात्मिकता के पथ पर चले, कैसे चले, माँ भोजन देने से पहले ये कहती थी जाओ भगवान को नमस्कार करके आओ, जब नमस्कार करेंगे तब आपको नाश्ता मिलेगा। हमें मालूम भी नहीं भगवान कौन है, लेकिन जो भी मंदिर बना होता था उसी को भगवान समझकर नमस्कार करके आते थे, और आते ही कहती थी देखो भगवान ने कितना आपको वरदान दिया। तो हमारे मन में ये भावनाएं बचपन से आई कि भगवान वरदान देता है, तो हर बात में वो हमें नैतिकता सिखा सकती है। ये माँ का फर्ज होता है, भोजन बनाती है, भोजन तो होटल में भी मनुष्य खाता है, कई जगह खाता है, लेकिन जो माँ का बना भोजन स्नेह और प्यार का भोजन होता है, मैं समझती हूँ कई होटलों से बढ़िया भोजन होता है।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 100% इस बात से मैं आपके साथ सहमत हूँ। अगर माता का समान जाग जाए तो वो क्या नहीं कर सकती, तब तो अबला नहीं शक्ति रूप हो जाती है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जल्द आपसे मिलेंगे, कहीं जाइएगा नहीं।
ब्रह्मा कुमारी से प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं।
दर्शन कराए अर्थात कि नारीत्व शक्ति के बारे में बताए, तो वो बेटा अपनी बहन के साथ फर्क नहीं करेगा, वो भाई अपनी बहन के साथ फर्क नहीं करेगा, उसको बचपन से ही उसको उस देवी के रूप में।
आप भी देखिए
नारीत्व दर्शन, नारी को नहीं नारीत्व को लेकर एक वैचारिक क्रांति।
Thank you.
करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारित्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति।
ओम शांति। एक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है हमारे शो में। दीदी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे आपकी संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस कार्य में संलग्न है, कैसे आप नारी के नैतिक और आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत हैं, इसके बारे में जरा मुझे बताइए।
मुझे देश सेवा का भी अनुभव है, अभी देश सेवा का भी। मैं आपको एक अनुभव सुनाना चाहूंगी रूस देश का। हमें पता चला कि रूस देश में वो माताएं जो पेंशन पर गुजारा करती हैं और उनका गुजारा बहुत मुश्किल हो चुका है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, पेंशन कम हो गई। मैंने इसी बात को देखते हुए सभी पेंशनर माताओं को बुलाया और उनसे पूछा कि आप रूस देश मास्को में उस समय में थी, मैंने पूछा आप क्या समझते हो, आपका गुजारा चल रहा है या नहीं चल रहा। सबने कहा दीदी हमारा गुजारा बहुत अच्छा चल रहा है, क्यों? वो आध्यात्मिक शिक्षा की विद्यार्थी रही और इस विद्या का पान करने के कारण उन्हें ये पता चला कि व्यर्थ खर्च कहाँ से मुझे रोकना है और समर्थ चीज जो मुझे आवश्यक है इस मास इस चीज को ले लूंगी, लेकिन जिसको मैं पोस्टपोन कर सकती हूँ उसको नेक्स्ट मंथ में पोस्टपोन करके फिर देखा जाए। और उनका जो फैशन प्रस्ती में पैसा जाता था, फैशन शर्ट के साधनों में पैसा जाता था, जो पिक्चर और खेल पार देखने में पैसा जाता था, जो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र और मेकअप में पैसा जाता था, जो शराब और नशीले पदार्थों के सेवन में पैसा जाता था, आध्यात्मिकता के पथ पर चलकर ये सब चीजें समाप्त हो जाती, क्योंकि ये चीजें मनुष्य तभी करता है जब उसके पास सच्चा सुख और सच्ची शांति नहीं होती। मैं समझती हूँ आध्यात्मिकता विशेष रूप से सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन नारी के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसको घर बनाकर संजो कर।
क्या बात दीदी, आपकी संस्था जिस निष्काम भाव से समाज के लिए इतना कार्य कर रही है वो काबिले तारीफ है। जो कदम आपने उठाए हैं वो महिलाओं के विकास में जरूर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आज हमारे बीच कुछ ऐसे भाई बैठे हैं जो आपसे अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे, तो आइए उनसे बातें करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं उनकी जबानी।
मैं बिमल दत्त हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ। इस इंडस्ट्री में अक्सर सभी का अनैतिक संबंध होती ही है, लेकिन ऐसे माहौल में भी मैंने अपने नैतिकता को दांव पे नहीं लगाया है। मैं ऐसे प्रोडक्शन भी नहीं करता हूँ जो अनैतिक को प्रोत्साहन करे, ना ही मैंने ऐसे कोई रोल स्वीकार किया है जो अनैतिक को पसंद करे, जिससे मुझे मेरी नैतिकता को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े जी। इसके पीछे प्रेरणा स्रोत मेरा पत्नी है।
मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, मेरे पास कपड़े का काफी स्टॉक मेरे गोडाउन में रहता है जिसका मैंने फायर इंश्योरेंस कर रखा हूँ। पिछले 5 वर्षों से कपड़े के व्यापार में साधारण सी कमाई हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट में मंदी का माहौल होने से मेरे जो साथी व्यापारी है उन्हें धंधे में ठीक कमाई न होने पर वे अपने गोडाउन में सस्ता माल रख कर शॉर्ट सर्किट से आग लगाकर फायर इंश्योरेंस क्लेम किया। माल की कीमत को हाई वैल्यू बताकर आज वो बहुत पैसा बनाकर रियल एस्टेट का धंधा कर रहे हैं। ऐसी शॉर्टकट से कमाई करने के लिए मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत समझाने पर भी मैंने नहीं की, क्योंकि नैतिकता आध्यात्मिकता एवं कर्म की गति को ध्यान में रखते हुए ऐसा अनैतिक कर्म करना मैंने उचित नहीं समझा, तो ये भी मेरे माँ का दिया हुआ संस्कार का ही असर है।
क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या संदेश आप देना चाहेंगी और नैतिक और आध्यात्मिक सशक्तिकरण को लेकर?
मैं ये कहूँगी कि कोई भी स्वयं को कभी गरीब न समझे, कभी साधारण न समझे, किसी से कभी इंफीरियर न समझे, क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्मा आप जैसी दूसरी नहीं। सारा विश्व ढूंढ कर आइए,
अलग है,
आप जैसा कोई भी एक्टर दुनिया में नहीं मिलेगा, तो आप विश्व के हीरो एक्टर, और अपने स्वमान और अपने स्वरूप उसको कभी विस्मृत। आपके जो अपने गुण हैं आपने उन गुणों को धारण कीजिए और किसी से गुण देखकर गुण चोर अवश्य बन जाइए, लेकिन किसी की कमी और कमजोरी के शिकार न बनिए, इस बात का जरूर ख्याल।
बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। आप अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारी ये सारी बहनें जो इस समय यहाँ बैठी हैं और आपको टेलीविजन पे सुन रही हैं, बहनों को उन्हें जीवन में किन किन बातों पर अमल करना चाहिए ताकि हमारी नारी के सशक्तिकरण की जो जंग है उसमें वो सफल हो जाए, ये बताइए।
ये कहूंगी जैसा दीदी ने बोला कि कोई अपने आप को गरीब ना समझे, और जो ये ब्रह्म कुमारी इसका आश्रम है, मैं तो कहूंगी यहाँ सब माताओं बहनों को जाना चाहिए जहाँ असली पता चलता है रूहानियत क्या चीज है, ताकि बॉडी कॉन्शियस से निकल के सब सोल कॉन्शियस में आके जब सब इक्वल एक नजर से सबको देखते हैं तब वो असली क्या कहते हैं मजा आता है जीने का। पैसों मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से फिर बहुत ऊपर उठ जाते हैं।
तो मतलब अपने अंदर की जो शक्ति है उसको कभी ना छोड़िए।
बिल्कुल।
अब समय आ गया है जिसमें हमें हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ना है और नैतिकता और आध्यात्मिकता से जीवन को सफल बनाना है। अब दोनों यहाँ इस शो पे आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी रिंपल जी और आपका भी दीदी, बहुत बहुत कुछ आज जानने को मिला आपसे, जो बातें सुनी बहुत कुछ सीखा। और हमारी ऑडियंस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी इतने दूर दूर से आए हैं हमारे शो को देखने के लिए और आपने अपने अनुभव हमारे सामने प्रकट किया, हमें बताए, उसके लिए शुक्रिया। त्याग तपस्या की मूर्त और संस्कारों की सीता है, निष्ठा सहनशीलता की जो रामायण और गीता है, जग जननी के लिए सदा ये वसुंधरा आभारी है, अब और सताना बंद करो सबला भारत की नारी है। दर्शकों आपके विचार क्या है हमारे इस प्रयास के बारे में जिसका नाम है नारी प्रदर्शन, हमें जरूर बताएं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है और आपके कुछ सवाल हैं या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो ये रहा हमारा पता। ओम शांति, वंदे मातरम।
संस्कृति की तू रक्षक है, संतति की संरक्षक है,
दिव्य गुणों की मूर्त नारी प्रथम गुरु और शिक्षक है,
तुम्हें लक्ष्मी देवी दुर्गा सरस्वती है पूजन।
हमारे इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही अनमोल हैं। जल्द ही लौटेंगे एक नए अंदाज के साथ, लेके कुछ और नए विचार, जानेंगे कुछ और नए राज। हमारे साथ बने रहिएगा। याद रखिएगा, विनर ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट नेशनल अवार्ड, नारीत्व दर्शन, नारी को नहीं नारीत्व को देंगे। एक वैचारिक क्रांति।